بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir اور ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir۔ اور انداز جہاں میں آج گفتگو ہوگی صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کے بارے میں، تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے گزشتہ ہفتے امریکہ کا دورہ ایسے عالم میں کیا ہے کہ جب امریکہ میں صدارتی الیکشن کے لیے امیدواروں کی مہم آہستہ آہستہ تیز ہوتی جا رہی ہے۔ امریکی صدارتی الیکشن میں صہیونی لابی ہمیشہ مرکزی کردار ادا کرتی ہے، یہی وجہ ہے کہ امیدوار عوام کی خواہش اور مطالبات پر توجہ دینے کے بجائے صہیونی لابی کی خوشامد میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کے دورہ امریکہ میں ان کی گفتگو کا مرکز ایران کا ایٹمی پروگرام رہا، اور انہوں نے ایران کے خلاف جنگ کی فضا بنانے کی بھرپور کوشش کی۔ اس درمیان امریکہ میں صہیونی لابی کے اہم ترین مرکز اپیک میں تقریر سمیت امریکی صدر باراک اوباما کے تمام بیانات تضاد کا شکار رہے۔ کبھی انہوں نے ایران کے خلاف دھمکی آمیز لہجہ اپنایا، اور کبھی اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے غیر پرامن ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ایران کے خلاف مہم پسندی کی مخالفت کی اور جنگ کے نتائج کی جانب سے خبردار کیا، جبکہ صہیونی وزیر اعظم بنیامن نتن یاہو کے خلاف جنگ کے ایران کے خلاف جنگ کے آپشن پر زور دیتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ باراک اوباما نے انہیں یقین دلایا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ کا آپشن کھلا رکھیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو، جہاں ہندوستان کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر ارشی خان صاحب موجود ہیں۔ ارشی خان صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
خان صاحب، صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کے حالیہ دورے امریکہ کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
دیکھیے، ابھی جو نتنیاہو کی جو وزٹ ہوئی ہے وہاں پہ ایپیک میٹنگ میں، اور اس کے بعد وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ امریکن صدر نے بھی وہاں پہ جو بیانات دیے ہیں، جو ان کا لیکچر ہوا تھا 4 مارچ کو، اور 4 مارچ کے بعد نتنیاہو، بنیامین نتنیاہو جو پرائم منسٹر ہیں اسرائیل کے، اور یہود باراک بھی شامل ہیں، وہ بھی 13,000 لوگ تھے کانفرنس میں، ایپک میں، جس کو بولتے ہیں امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی۔ تو اس میں نتنیاہو کے جو بیانات ہیں، جس طرح سے انہوں نے لیکچر دیا کہ اس کو ایک نیوکلیئر ڈک کی طرح بتایا کہ نیوکلیئر ڈک ہے ایران، اور ڈک جو بھی ہو لیکن نیوکلیئر ڈک ہے، مطلب پورے امریکہ میں اسرائیل آپ جانتے ہیں کہ اپنے ڈپلومیسی کے ذریعے، پولیٹیکل اسٹریٹجسٹ کے ذریعے، اور اپنے اوپینین میکرز کے ذریعے ہر میڈیا میں اور تمام ورلڈ میں یہ میسج دینا چاہ رہا ہے کہ ایران ایک نیوکلیئر تھریٹ بن رہا ہے، اور لہذا اس کو کنٹین کرنا میری ذمہ داری ہے، اور یہ ایران جو ہے وہ اسرائیل کے لیے خطرہ ہے۔ اور اس میں نتنیاہو نے یہ کہا کہ میرے پاس تمام وہ حقوق ہیں جو ہمیں اپنے بچانے کے لیے ہوں گے، مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایران پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، حملہ کریں گے، اور اس کے لیے آپ نے دیکھا ہے کہ کئی طرح کے پریشر، پوری لابی لگی ہوئی ہے، ایک لابی ہے امریکہ میں جو کہ امریکی صدر ہیں اوباما، ان پہ لگاتار پریشر بن رہے ہیں کہ کسی بھی کس طریقے سے یا تو امریکہ ایران پہ اٹیک کرے یا اسرائیل کو اٹیک کرنے دے، اس کے بیچ میں یہ نہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے، آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 3 سالوں میں جو صدر اوباما، باراک اوباما کے جو ریلیشن ہیں، خان صاحب
خان صاحب آواز میں تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے آپ کی، آپ کیا ارشد خان صاحب کی آواز میں تھوڑی پرابلم ہے، ہم اپنے ساتھیوں سے کہیں گے کہ دہلی اسٹوڈیو سے دوبارہ رابطہ قائم کیا جائے، اور اسلام آباد اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار اظہر عابدی صاحب. عابدی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
عابدی صاحب، صہیونی حکومت کے کسی بھی عہدیدار کا دورہ امریکہ غیر معمولی بات نہیں ہے، لیکن اس دورے کی خاص بات یہ ہے کہ امریکہ میں صدارتی الیکشن کی مہم میں تیزی آ رہی ہے. اس تناظر میں صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کے دورے کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟
اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ اسرائیل کے وزیر اعظم ہوں، وزیر خارجہ ہوں، وزیر دفاع ہوں، وہ ان کا امریکہ کا دورہ جو ہے وہ کوئی نہ تو نئی بات ہے اور نہ غیر معمولی بات ہوتی ہے، اور اسرائیل کا کوئی نہ کوئی عہدیدار جو ہے وہ امریکہ میں ہوتا ہی ہے، اور ایسی خبریں ہمیں ملتی رہتی ہیں. اس مرتبہ میں جو دیکھ رہا ہوں 2 باتیں بڑی اہم نظر آ رہی ہیں. ایک تو وہ جو آپ نے فرمایا کہ امریکن صدارتی الیکشن جو ہیں قریب ہے، اور یہودی لابی کا جو امریکن الیکشن پہ اثر ہوتا ہے وہ بالکل واضح ہے. بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ امریکن الیکشن کو کچھ پلان ہی اس طرح سے کیا جاتا ہے اور کیا گیا ہے کہ اس میں جس طرح سے پیسے کی ریل پیل ہے، اور جب تک کہ اربوں ڈالر جو ہیں وہ کسی کے پاس نہ ہوں تو وہ جو ہیں وہ الیکشن وہ جماعت نہیں لڑ سکتی، اور لاکھوں کروڑوں ڈالر کسی شخص کے پاس نہ ہوں تو وہ شخص الیکشن نہیں لڑ سکتا. اور کیونکہ اکانومی کو دیکھا جائے، اگر فائنینسز کو دیکھا جائے، تو وہاں پر یہودی لابی بہت سٹرونگ ہے اس معاملے میں. لہٰذا جتنے بھی الیکشن امریکہ میں ہوتے ہیں، خواہ وہ صدارتی الیکشن ہوں، خواہ وہ ان کے کانگریس کے الیکشن ہوں، وہاں پر ہمیشہ یہودی لابی کا اثر رہتا ہے، کیونکہ پیسے کے بغیر اور یہودی لابی کی مرضی کے بغیر وہاں پر بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کا کامیاب ہونا. چند ایک اکا دکا مثالیں اس کی ملتی ہیں. لہذا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس عمل کو تیز کرنے کے لیے یہ دورہ جو ہے وہ اس کا پلان کیا گیا کہ ایسے موقع پہ کیا جائے، اور اس کے اثرات سامنے نظر آنے لگے کہ جو ریپبلکن کینڈیڈیٹس ہیں جو ابھی دوڑ میں شامل ہیں اور ان کا فیصلہ ہونا ہے کہ کون جو ہے وہ اوباما کا مقابلہ کرے گا، تو انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک بیان ایران کے خلاف دینا شروع کر دیا. اور ان کا جو لیڈنگ کینڈیڈیٹ ہے اس نے ابھی کہا کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ ایران پر حملے کی آپشن جو ہے اس کو سنجیدگی سے دیکھے. تو یہ تو بات ہے ہی ہے، لیکن ایک اور جو غیر معمولی بات اس دفعہ نظر آ رہی ہے، انپریسیڈنٹڈ ہے، یعنی اس کی مثال پہلے نہیں ملتی، کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام یہ اس پوری وزٹ پر چھایا رہا. آپ ویسٹرن میڈیا کو دیکھیں، الیکٹرانک میڈیا کو دیکھ لیں، پرنٹ میڈیا کو پڑھ لیجئے، امریکن میڈیا کو پڑھ لیجئے، تو ایران کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ سب سے پہلی خبر ہے، سب سے پہلا تجزیہ ہے، اور سب سے پہلا وہ ایشو ہے جو اس تمام تناظر میں دیکھا جا رہا ہے، یعنی اس ایشو کا ایک پیوٹل رول ہے. تو اور جو نتنیاہو ہے اس نے یہ اپنے ابھی، جیسے ہمارے ایک تجزیہ نگار کہہ رہے تھے کہ جو امریکن اسرائیلی پبلک افیئر کمیٹی ہے جو سالانہ اس کا اجتماع تھا، اس میں نتنیاہو نے اس معاملے کو جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ترین پوائنٹ تھا. پھر باراک اوباما نے بھی جو ہے اسی معاملے کو اہمیت دی، اور وہاں پر جو ان کا وزیر دفاع ہے اس نے بھی یہی کہا، اور بڑی وہاں پر جو باتیں یا جو جملے مشہور ہوئے ان میں یہی ہے کہ امریکہ یا تو اسرائیل ایران کے اس اٹامک جو ان کا سو کالڈ ایک وہ ہے کہ ایران بوم بنا رہا ہے اٹامک بوم، تو اس کی ان انسٹالیشنز پہ یا تو حملہ کرے یا اسرائیل کو اپنی فیٹ اپنے ہاتھ میں، یعنی اپنی تقدیر کا مالک بننے دے. یہ ایک بڑا جملہ وہاں پر اس وقت سفارتی حلقوں میں اور جو میڈیا ہے اس میں مشہور ہے. لیکن اگر اس تمام صورتحال کو دیکھا جائے، اور یہ جو ایک ہفتہ وہاں پر اسرائیلی وزیر اعظم، وزیر دفاع اور ان کے انٹیلیجنس کے عہدیداروں نے گزارا، इसमें अभी मैं ये कहूँगा कि आहिस्ता आहिस्ता खबरें सामने आ रही हैं, और एक कुछ हल्कों का ये तजिया है कि इसराइली वजीर आजम काफ़ी कंफ्यूज होके वापस जा रहे हैं। कहने को तो बारिक ओबामा ने भी कहा कि हम ईरान को रोकने के लिए फोर्स इस्तेमाल करेंगे, और ईरान जो अमेरिका के जो दीगर अहदेदार हैं उन्होंने भी कहा, लेकिन ये खबरें भी आई हैं कि जो सिफारतकार हैं उन्होंने नेतन्याहू हो या इसराइल के दीगर जो वफ्द के अरकान हैं उन्हें कहा है कि ये इतना आसान काम नहीं है। और अभी तो 2 दिन पहले ओबामा, प्रेसिडेंट ओबामा की अपनी स्टेटमेंट भी आ गई कि ईरान पर हमला जो है वो कोई खेल नहीं है, इसकी बड़ी कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो गोया जिस तरीके से वो एक, ये मेरा तजिया है और मैं सूरत हाल को जिस तरह देख रहा हूँ कि जिस तरह से वो एक इसको नुक्ते अरूज पर ले जाना चाहते थे, इस पॉइंट को, इसराइली वफ्द और इसराइली वजीर आजम, उस तरह से शायद ये आया नहीं है। यानी अमेरिका ने उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया जिस तरह से नेतन्याहू चाहते थे। और इसके पीछे जो और खबरें नजर आ रही हैं इसके पस मंजर में, उनमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी हैं। खुद ये खबरें भी गर्दिश में रही कि खुद इसराइल की इंटेलिजेंस जो है उसने भी यही कहा, इंटेलिजेंस चीफ ने, और जो अमेरिकन सिफारतकार हैं उन्होंने भी, कि ईरान पर हमला जो है ये बहुत महंगा पड़ेगा, और ये जो वॉर है ये बकौल उनके ईरानियों को, यानी ईरानी कौम को बिल्कुल मुत्तहद कर देगी। फिर जो इसके इम्प्लीकेशंस हैं या जो इसका एक वो नतायज लेना चाहते हैं वो हासिल नहीं हो पाएंगे, उनकी ये रिपोर्ट्स हैं कि ईरान अंदरूनी तौर पर दिफाई लिहाज से भी इतना मजबूत है कि चंद स्ट्राइक्स जो हैं वो ईरान का या ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लिहाजा अगर आप इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो मैं नहीं ये समझता कि इसराइली वजीर आजम या इसराइली वफ्द ने जो प्लान किया था उस प्लान के मुताबिक उसने वहाँ कुछ हासिल किया, और ओबामा की जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है उसमें तो वाजे हो गया। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इसराइली वजीर आजम, इसराइल के दीगर अहदेदार जो वक्तन फोक्तन वहाँ पर विजिट्स करते रहते हैं उसके बायस जो वो असरअंदाज होते हैं अमरीकी इलेक्शन पर, चाहे वो सदारती हों, चाहे वो जो हैं वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के हों, चाहे सेनेट के हों, वो बहरहाल एक मामला जो है आगे बढ़ा है। और इसके अलावा जो उनके रिलेशनशिप हैं और जिस तरह से अमरीका जो है वो मुकम्मल तौर पे इसराइल के एक सेवियर के तौर पे या इसराइल को एक मुकम्मल तहफ़ देने वाले मुल्क के तौर पर सामने, वो बात बहरहाल आगे बढ़ी है। और अभी जो हर साल अमेरिका से तकरीबन $3 बिलियन की हेल्प जो है वो इसको इसराइल को जाती है, इस दफा भी ओबामा ने जो सिफारिश की है वो 75 मिलियन और बढ़ा दिए हैं और 3.075 बिलियन हो गई है, जो ये दिखाई जाती है। और बहुत से तजिया निगार ये कहते हैं कि ये टिप ऑफ आइसबर्ग है, कुछ इदारों ने ये अंदाजा लगाया कि
जी,
इसराइल
शुक्रिया आदि साहब, हम आपकी तरफ
के
दोबारा
दिफा
आएंगे।
के लिए अमेरिका जो
बहुत बहुत
बराहरात
शुक्रिया
इमदाद
आदि
देता
साहब
है उसके साथ साथ जो पूरी दुनिया में उसके नुकसान होते हैं 3 ट्रिलियन पर पहुंचते
जी,
हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया आदि साहब। हम हमारी गुफ्तगू आपसे जारी रहेगी, और दिल्ली स्टूडियो से हमारा राबता दोबारा बरकरार हो गया है। अर्शी खान साहब, आदि साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहजा फरमाई होगी, जहां तक ईरानी कौम का सवाल है तो ईरानी कौम कल भी मुत्तहिद थी, आज भी मुत्तहिद है और कल भी मुत्तहिद रहेगी। और कंफ्यूजन की बात है तो खुद बाराक ओबामा भी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। सहयोनी हुकूमत के अमेरिका पहुंच के वजीर आजम के अमेरिका पहुंचने से पहले ही बाराक ओबामा की तजाद बयानी शुरू हो गई थी। कभी उन्होंने ईरान के खिलाफ जंग का ऑप्शन खुला रखने पर जोर दिया, तो कभी जंग के खतरनाक नतायज की जानिब से खबरदार करते नजर आए। उनकी तजाद बयानी के बारे में आपका तजिया क्या है?
देखिए, मैंने पहले भी कहा है, मेरे ख्याल से मेरी आवाज साफ आ रही होगी आपको।
जी, अब आ रही है
मेरी आवाज आ रही
जी,
है?
बिल्कुल। थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है आपके कनेक्शन में थोड़ा। जी, बोले हैं खान
मैं
साहब।
ये कह रहा था कि आपने अगर स्टेटमेंट देखा होगा, आपने ओबामा का जो स्टेटमेंट देखा होगा, ओबामा साहब का, खास करके अमेरिका में, और उनसे रिलेटेड और भी लोगों का जो स्टेटमेंट था। तो आपने ये देखा कि जो अमेरिका की जो पॉलिसी है, खास करके इंडिया ईरान के कॉन्टेक्स्ट में, वो एक फॉरेन पॉलिसी का पार्ट नहीं है। मैं आपको ये कहूंगा वो फॉरेन पॉलिसी के पार्ट से थोड़ा सा हट रहा है, इसलिए कि बहुत पहले फॉरेन पॉलिसी पे।
जी, दिल्ली स्टूडियो से रबते में कुछ प्रॉब्लम है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। टेलीफोन पर पता नहीं कोई किसी से रबता हुआ है या नहीं, या मैं अजहर आब्दी साहब की तरफ चलते हैं। आब्दी साहब, जनाब सहयोनी हुकूमत के दौरे अमरीका के मौके पर बाराक ओबामा साहब की तजाद बयानी से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत हद तक बौखलाहट का शिकार है, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
जी, ये तो मैं अभी अपनी गुफ्तगू में ये कह चुका कि जब आप इस, ये जो पूरा मार्च का पहला हफ्ता गुजरा है, इसमें आप मीडिया के तजियों को देखें, खुद खबरों को फॉलो करें, तो जो इसराइली वफद है वो बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार रहा है, और ख़ुद बाराक ओबामा। और उसकी वजह जो है वो ख्वाहिशात और रियलिटीज़, इनके दरमियान तजाद है। यानी उनकी ख्वाहिश मैं एक और अर्ज़ करता चलूँ कि ईरान की गवर्नमेंट का और इनकलाब इस्लामी ईरान का और ईरानी अवाम का अब तक का पिछले 30-32 साल का रिकॉर्ड देखें तो ईरान के फॉरेन ऑफिस ने, ईरान की जो एजेंसी है न्यूक्लियर से रिलेटेड, ईरान की वजारत दाखला ने कभी झूठ नहीं बोला, कभी गलत बयानी नहीं की, कोई तजिया कोई रिपोर्ट ऐसे नहीं कह सकती। लिहाजा जब रिकॉर्ड इतना क्लियर है, जब ईरान खुद ये कहता है कि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब, यानी हमारी स्टेट न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रही, और हमारा, हमने तो एनपीटी पे साइन किए हुए हैं, और हमारा जो इरादा है और जो हमारा हक है, हम जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको पीसफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे, जो सारी डेवलप्ड वर्ल्ड कर रही है, तो बात न्यूक्लियर की नहीं है। ये मैं दरमियान में एक बात जरा कहना चाहता था ताकि एक बात वाजे हो जाए। एक्चुअल जो ईरान तरक्की कर रहा है साइंस में, टेक्नोलॉजी में, खुद इन्हेसारी में यानी सेल्फ रिलायंस में, और एक तरक्की याफ्ता नेशन होने जा रहा है, और इस्लाम का एक, जिसको कहते हैं कि एक मॉडल के तौर पे सामने आ रहा है, तो असल जो बात बर्दाश्त नहीं हो पा रही, और असल बात जिसको इस वक्त सहूनी ताकतें और वेस्ट जो है वो रोकना चाहता है, वो ये है कि ईरान की वो तरक्की और खुद इन्हेसारी नहीं देखना चाहते, क्योंकि उस पूरे अरब के लिए, पूरे आलम इस्लाम के लिए और पूरी दुनिया लैटिन अमेरिका के स्टेट के लिए वो एक मिसाल बनते जा रहे हैं, और अमेरिका को और वो पावर्स जो इस्तेमारी पावर्स हैं कि जिन्होंने वसाइल लूटने होते हैं, उनको ये खतरा होता है। तो ये तो मैंने एक बात की कि ये मसला ये नहीं है कि उनको कोई ईरान से बॉम्ब बनाने का खतरा है, वो तो ईरान कह चुका है, वो ईरान को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। अब बात जो मैं बात कर रहा था कि रियलिटीज और ख्वाहिशात जो हैं उनका टकराव हो रहा है, कि जो रिपोर्ट्स हैं ईरान की बज़ाहिर तरक्की देखकर भी, और जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं खुद इसराइल की, और जो बाराक ओबामा और अमेरिकन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी जो रिपोर्ट हैं, वो ये बताती हैं कि ईरान कोई इतना सॉफ्ट टारगेट नहीं है। ईरान इज़ वेरी हार्ड टारगेट, अपनी तरक्की की बिना पे, अपनी कौमी यकजहती की बिना पर, और मैं ये कहूँगा कि खुदावंद कुदूस पर एक गैर मुतजलसल ईमान के बिना पर। लिहाजा मैं कई तजिये देख रहा था खुद अमेरिकन राइटर्स के, कि ईरान की जो इंस्टॉलेशंस हैं या ईरान की जो जो न्यूक्लियर एसिड्स हैं वो इतने महफूज हैं कि बहुत सारी स्ट्राइक्स के बाद भी उनको डैमेज नहीं होगा। तो ये वो रिपोर्ट्स हैं जिनकी बिना पर अब ओबामा ने ये भी कहा एक मर्तबा कि जो ईरान पर सैंक्शंस लगाई गई हैं उनका कुछ रिजल्ट्स नज़र आ रहा है सामने, तो अब तक तो नज़र नहीं आया, अब ना मालूम उनको कैसे नज़र आ गया, या ये कहा कि अभी डिप्लोमेसी वर्क करती हुई काम जो है वो नज़र आ रही है। तो ये सारी तजाद बयानी, सारी कन्फ्यूजन, सारी बौखलाहट इस वजह से है कि जो हमले की सूरत में उनको अपना टारगेट अचीव होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, एक बात, और दूसरी बात ये कि उनको ये डर है कि ये जो जंग है ये फिर ईरान तक महदूद नहीं रहेगी, ये वसी हो जाएगी, इसकी लपेट में यकीनन यकीनन इसराइल भी आएगा, और इसकी लपेट में जो अमरीकी मफादात हैं खित्ते में वो भी आएंगे, और इसकी वजह से जो तेल की कीमतें हैं, जो इकोनॉमी में, दुनिया की इकोनॉमी में एक खून की तरह जो है वो ये तेल जो है उसकी हैसियत है, दौड़ रहा है, वो जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर चली जाएंगी। और खुद ये तजिए इस वक्त आ चुके हैं कि ईरान पर टारगेट से अमेरिकन इकोनॉमी को और वेस्ट की इकोनॉमी को नाकाबले तलाफी नुकसान होगा। लिहाजा जब वो ये सारा सिनेरियो देखते हैं, इकतसादी हवाले से अपना नुकसान देखते हैं, हदफ ना हासिल होने के हवाले से कि ईरान में टारगेट से वो हदफ हासिल नहीं कर पाएंगे, ये सिचुएशन देखते हैं, तो फिर उनको ईरान पर अटैक करते हुए जो है वो कोई फायदा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा नुकसान नजर आता है। लिहाजा फिर वो जो क्योंकि ये तो जंगी जरायम इरतकाब करने में तो अमेरिका की हिस्ट्री जो है, रिसेंट हिस्ट्री और पास हिस्ट्री और इसराइल की वो बिल्कुल सामने है, लेकिन जो चीज रोकी हुई है वो उनको अपने अहदाफ हासिल होते हुए नजर नहीं आ रहे।
जी
लिहाजा ओबामा की भी तजाद बयानी इसमें वाजे है। और खुद आप ये जरूर देखिए कि इसराइल के जो वफ्द है वो भी काफी बौखलाहट और कंफ्यूजन का शिकार है। तो इसकी वजह खुदा के फजलो करम से ईरान की यकजहती, ईरान का खुदावंदे कुद्दूस पे पूरा एतमाद और ईरानी कौम की और इनकलाब इस्लामी की बेमिसाल तरक्की है, ख्वाह वो साइंस के मैदान में हो, ख्वाह वो इक्तसादियात के मैदान में हो। तो ये तो बात अजहर मिन शम्स है और मैं आपसे इस पे मुत्तफिक हूँ, लेकिन बौखलाहट, कन्फ्यूजन और ये जो इस वक्त कैफियत है अमेरिका और इसराइल दोनों में, उसकी वजह यही है कि उनको इस विजिट से वो अहदाफ हासिल होते हुए नजर नहीं आ रहे।
जी बहुत बहुत शुक्रिया आप जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और गोया के हमारे साथियों ने डॉक्टर अर्शी खान से टेलीफोन लाइन के जरिए राबता बरकरार करने की कोशिश की है। अर्शी खान साहब जी, जनाब थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी दिल्ली स्टूडियो से राबता बरकरार होने में, टेलीफोन पर आपसे राबता बरकरार किया गया है। ये जो तजाद बयानी रही है खास तौर पर बाराक ओबामा साहब की इसराइली वजीर आजम के दौरे के मौके पर, इसके बारे में तजिया क्या है आपका?
मैं यही कह रहा था कि
जी
अगर आप अमेरिकन में जो चीज कट गई कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में आप देखेंगे, इसराइल की जो फॉरेन पॉलिसी है वो तो नेचुरली एक फेल्ड फॉरेन पॉलिसी है, लेकिन यहाँ वॉर की बात करते हैं वहां पे कोई फॉरेन पॉलिसी नजर नहीं आती। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके लिए एक किताब भी है, कुर्ट लंदन साहब ने लिखा था 1950 में। बाराक ओबामा साहब की अगर आप स्पीच को देखें तो मैंने जो उसका तजिया किया है उसमें तीन चीजें मिलती हैं।
जी
एक आप देखें कि वो डिस्क्लेमर बोलते हैं और डिस्क्लेमर ये है कि वो ये कह रहे हैं कि मैं कोई भी पॉलिसी ईरान को कंटेन करने के लिए नहीं प्ले कर रहा हूं, पहली बात ये कहते हैं।
जी
उसके बाद जो उनका सेंटेंस है उसके बाद वो ये कहते हैं कि अमेरिका ये चाहता है कि ईरान किसी भी तरीके से न्यूक्लियर डेवलपमेंट नहीं करे, न्यूक्लियर पावर नहीं बने किसी भी तरीके से। फिर तीसरे में अपने दोनों चीजों को निगेट करते हैं खुद अपने आप से, वो ये कहते हैं कि अमेरिका कोई भी कदम उठा सकता है ईरान के खिलाफ किसी भी वक्त उठा सकता है और जितने ऑप्शंस हैं वो आपके टेबल पे ऑफ द टेबल नहीं है, सारे टेबल पे हैं। तो ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो स्टेटमेंट है इससे ये जाहिर होता है कि नेचुरली अमेरिका जो है वो ईरान के मफाद में नहीं है, काफी प्रेशर है अमेरिका के ऊपर में। बाराक ओबामा की जो पॉलिसी है वो ये है कि किसी न किसी तरीके से ईरान को कंटेन किया जाए, ईरान को और भी ज्यादा नुकसान दे और सीवियर जो पाबंदियां हैं उसमें जकड़ा जाए, और भी दूसरी कंट्रीज को जो है उनको धमकाया जाए या उनको प्रेशर में लाया जाए कि ईरान से वो अपने इक्तिसादी रिश्तों को या रिश्तों को वो खत्म करें। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है कि यहाँ पे अमेरिकन जो फॉरेन पॉलिसी है मैं एक तरह से अप्रिशिएट करूंगा इस हाईली निगेटिव कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में, वो ये है कि 3 साल से ओबामा साहब का जो रिलेशन है नेतन्याहू से वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपने फेस रीडिंग किया होगा, काफी बेचैनी है। रिपब्लिकन एक तरफ तो पूरा ढोल बजा रहे हैं, चाहे आप रोमनी को ले लीजिए या आप सेंटोरम को ले लीजिए या गिंगरिच को ले लीजिए, वो तो ये कह रहे हैं कि अगर ओबामा साहब दोबारा इलेक्शन जीत गए तो ईरान जो है वो एक न्यूक्लियर थ्रेट हो जाएगा, ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेती। इस तरह की तमाम जो है अफवाहें वो अमेरिका में रिपब्लिकन वाले फैला रहे हैं, लेकिन ओबामा की यहाँ पे अगर आप पॉलिसी देखेंगे तो ओबामा जो है वो ईरान पे प्रेशर बनाए रखना चाहते हैं, इसी में वो अपनी कामयाबी समझते हैं, लेकिन उन्होंने बार बार ये कहा कि आप जो है वो लूज टॉक नहीं करें, और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई आप इसको मतलब खामखा की बात ना करें कि भाई जिसको उन्होंने कहा कि आउटबर्स्ट कर रहे हैं आप कि हम जंग करेंगे इस तरह की, उन्होंने बचकाना उसकी बात कही, और इससे वो इसराइली काफी नाराज भी हैं। बहुत सारे हलके में अगर आप जेरूशलम पोस्ट को देखें या उनके जो न्यूज पेपर है उनको आप देखें तो उसमें काफी क्रिटिसिज्म है। लेकिन उसके बाद का जो डेवलपमेंट है, 5 तारीख को जो मीटिंग हुई है दोनों की, बाराक ओबामा साहब की और नेतन्याहू की, तो इस मीटिंग में आप देखेंगे कि दोनों में जब आपस में कुछ पर्सनल बातें हुई कि भाई कैसे हैं, क्या है क्या नहीं है, उसके बाद जो बात हुई तो बाराक ओबामा ने यही कहा कि ये वक्त वॉर का नहीं है, ये वक्त डिप्लोमेसी का है, ईरान पे हम प्रेशर रखना चाहते हैं, कर रहे हैं, आप किसी भी तरह से इस तरह की गलती नहीं कीजिएगा। और इस तरह की बातें सिर्फ बाराक ओबामा साहब ने नहीं किया बल्कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो काफी प्रो इजरायली है टॉम डोनिलॉन, आपने देखा होगा बॉब वुडवर्ड की किताब में उनका जिक्र है जो 2010 में लिखा था, तो टॉम डोनिलॉन जो काफी प्रो ज़ायनिस्ट हैं, प्रो इजरायली हैं, वो भी इस फेवर में नहीं है कि ईरान पे अटैक किया जाए और जिस तरह से नेतन्याहू वॉर गन बीटिंग कर रहे हैं वो इस तरह से किया जाए। तो ये पूरा मेरा तजिया ये है कि ये जो एपेक की मीटिंग थी, आपकी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें करीब 13,000 लोग थे, और पूरी एपेक की मीटिंग जो है वो एक तरह से आप समझें कि वो एक एक पोल कैंपेन की तरह है। तमाम जितनी पार्टीज हैं वो चाह रही हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा एंटी अमेरिकन एंटी ईरानियन स्टैंड लें और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल बनाएं कि हमें जो है बहुत सारे फंड मिले, इनके जायनिस्ट फंड मिले, सारा कुछ। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि ओबामा की जो पॉलिसी है वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमें डिप्लोमेसी को स्पेस देना होगा, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को देना होगा, इकोनॉमिक सैंक्शन को देना होगा, वार अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। और ये जो स्टेटमेंट है ओबामा साहब का और इस तरह के जो इतराजात ओबामा ने किए हैं वो इटसेल्फ इसराइल के इसराइल को एक्सपोज करते हैं, इसराइल को निगेट करते हैं और इसराइल की पॉलिसी से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी जो सिचुएशन बन रही है वो काफी ईरान के फेवर में बन जा रही है बात। और ये भी मैं एक इम्पॉर्टेंट बात मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ कि अमेरिका ने फिर अभी कहा है, दोबारा ये कहा है कि 2003 का जो अमेरिकन इंटेलिजेंस एस्टिमेट है 2003 का, वो 2007 का अमेरिकन इंटेलिजेंस, 2010 का अमेरिकन इंटेलिजेंस, ये तीनों जो इंटेलिजेंस एस्टिमेट हैं, इन्होंने ये वादे किया है कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो बॉम्ब बनाना चाहते थे उनके हिसाब से वो नहीं है, मतलब ईरान के बॉम्ब नहीं बना रहा है। ये तीनों जो रिपोर्ट है 2010 के, 2007 के और 2003 के, ये अमेरिकन सोर्सेज ने ही खुद कहा है, इस बात को वादे किया कि ईरान बॉम्ब नहीं बना रहा, ईरान के पास बॉम्ब नहीं है। इसके अलावा आप ये देखेंगे 3 जो कंट्री हैं वो इसराइल से काफी मिलता जुलता स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक तो खुद इसराइल है, उसके अलावा आप देखेंगे जर्मनी, फ्रांस और यूके, ये तीनों जो लोग हैं वो कुछ मिलती जुलती बात इसराइल से ही कर रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू ने जो अपने स्पीच में कहा वो ये कहा कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, बिल्कुल साफ इस तरह से कहा। लंदन जो है वो कहता है कि वो उसकी तरफ बढ़ रहा है, जर्मनी भी नहीं इसी बार। लेकिन अमेरिका के अगर आप स्टैंड को देखें तो अमेरिका ये नहीं कह रहा है, अमेरिका ये कह रहा है कि भाई मैं नजर रखे हुआ हूँ, साफ तमाम चीजें हैं। तो ये जो अभी एपेक का कॉन्फ्रेंस हुआ इससे मेरे बात ये समझ में आती है कि अभी अमेरिका किसी भी तरीके से तैयार नहीं है इसराइल को ग्रीन सिग्नल देने के लिए कि वो कोई भी ऐसा अनलॉफुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल स्टेप ले जिसके जरिए वो किसी भी तरह से अटैक करे। लेकिन आप जानते हैं कि इसराइल की हिस्ट्री रही है कि इसराइल ने 1981 उस इराक पे अटैक किया, इराक में उनके न्यूक्लियर प्लांट पे, फिर 2007 में इन्होंने अटैक किया आपके सीरिया के न्यूक्लियर प्लांट पे। अब ये इसी तरह की ये चीज चाह रहे हैं कि वो ईरान में करें, इसलिए कि ईरान में जो जितनी भी एक्टिविटीज है न्यूक्लियर एक्टिविटीज है वो बिल्कुल वाजे हैं, IAEA के तमाम कैमरे लगे हुए हैं, उनके इंस्पेक्शन हो रहे हैं, उनके लोग जा रहे हैं। इवन IAEA ने ये भी क्लेम कर दिया कि भाई मैं पार्किंग को देखना चाहता हूँ, पार्किंग जो है वो एक न्यूक्लियर प्लांट नहीं है लेकिन वो जाना चाहते हैं, उसकी भी इजाजत शायद ईरान ने दे दी है। तो ईरान ने तमाम चीजों को ट्रांसपेरेंट किया है और सुल्तानिया साहब जो है वो IAEA में जो एम्बेसडर है वो तमाम चीजों को वाजे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से अफवाह फैला रहा था इसराइल ईरान के खिलाफ में कि ईरान बॉम्ब बना रहा है, उसकी उसकी मुखालफत बहुत ही सॉफ्ट वर्ड में कहें या उसको निगेट किया है खुद अमेरिकन इंटेलिजेंस ने। और अमेरिकन इंटेलिजेंस के तो कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि इसराइल इस पोजीशन में नहीं है कि वो ईरान को डिफीट कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी जो अमेरिकन पॉलिटिक्स है उसमें काफी इंतजार है खुद अमेरिका में ही। ओबामा को बुरा भला कहा जा रहा है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि ये प्रो ईरानियन हो गए हैं, वो काफी वो भी प्रेशर में है वहां पे। और मैं ये समझता हूँ कि ओबामा साहब के पास भी बहुत अच्छा मौका है कि पूरा जो मिडल ईस्ट है जो कि अभी पूरा वायलेंस में जो है वो गिर गया है, पूरी तरह से इंतजार है वहां पे, इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई है। मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका जो एक अपने आप को होशमंद और रिस्पॉन्सिबल कंट्री मानता है उसे ये सोचना चाहिए कि ईरान के खिलाफ जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसमें कमी लाई जाए। और खुद अमेरिका में ही जो एंटी ईरानियन प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है जिसके तहत एंटी ईरानियन सेंटीमेंट को बढ़ाया जाए उसमें कमी की जा सके। इसलिए कि अगर ईरान में इनस्टेबिलिटी आएगी तो सिर्फ वो ईरान का मामला नहीं है, ईरान एक ऐसे पोजिशन पे है, चाहे आप जियोग्राफिकल लें या इकोनॉमिक पोजिशन लें, या ईरान तो आप देखें कि किस तरह से वो ईरान, अगर आप सेंट्रल एशिया जाना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, इंडिया के लिए ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है सेंट्रल एशिया के एक्सेसिबिलिटी के लिए या अफगानिस्तान के लिए, तो ईरान की स्टेबिलिटी जो है वो एक मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी में बहुत बड़ा ईरान का रोल है। इसलिए ईरान को डिस्टर्ब करने का मतलब है कि आप पूरी तरह से मिडिल ईस्ट को झोंक रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट मौका है अमेरिकन के पास, वहां से भी अमेरिका में भी अच्छे थिंकर्स हैं, अच्छे लोग हैं और हर तरह के लोग हैं, तो जो वहां पे कंस्ट्रक्टिव लोग हैं फॉरेन पॉलिसी में भी या गवर्नमेंट की एजेंसीज में भी, उनको ये सोचना चाहिए कि हम किसी भी कंट्री के या किसी भी जो एंटी ईरानियन फोर्सेस हैं उनके दबाव में हम इतना ना जाएं जो एक शर्म की बात हो। इसलिए कि खुद अमेरिका की अपनी फॉरेन पॉलिसी होने, किसी लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि इस वक्त इम्पॉर्टेंट है अमेरिका के लिए कि फॉरेन पॉलिसी वो परसू करे, वॉर पॉलिसी परसू नहीं करे। और मुझे ये लगता है कि अमेरिका फिल वक्त अभी फॉरेन पॉलिसी की तरफ फिर रिवर्ट बैक हो रहा है। लेकिन आप दो महीने पहले का स्टेटमेंट देखें अमेरिका का, वो काफी हॉकिश है, लेकिन अभी का जो स्टेटमेंट आप देखेंगे वो काफी हॉकिश नहीं है बल्कि एक प्रेशराइजिंग की तरफ बढ़ रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि ईरान से बेहतर ताल्लुकात दोनों कंट्री में हो, इसलिए कि ईरान ने हमेशा जो है ऑफर किया डायलॉग के लिए, भाई डायलॉग हो तो नेगोशिएशन हो। और मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई इस तरह की बात होती है फिर जो 5+ का जो फॉर्मेशन है तो ईरान इसके लिए तैयार है, तो उससे पूरे खित्ते के लिए काफी अच्छा रहेगा और उसे अमेरिका की जो इमेज है उसको रीबिल्ड किया जा सकेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और टेलीफोन लाइन के जरिए ही हमारा राबिता बरकरार हुआ है नॉर्वे में मुकीम बर सगीर के एक सीनियर तजिया निगार हैदर हुसैन साहब से। हैदर हुसैन साहब अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम।
हैदर हुसैन साहब, अमरीकी सदर ने गुज़श्ता मंगल को व्हाइट हाउस में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके मुकाबले पर आने के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार जंग का नक्कारा बजा रहे हैं, ईरान के खिलाफ जंग की बातें करते हैं, लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए कि यह कोई खेल नहीं है, इसके नतायज इंतहाई खतरनाक होंगे। इसके साथ ही नेतन्याहू ने सेहोनी लॉबी के मरकज एपेक में अपनी तकरीर में कहा है कि ओबामा ने उनसे वादा किया है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे और जंग का ऑप्शन भी खुला रखेंगे। इस बारे में आप क्या कहेंगे?
जी असल में इसमें कई चीजें हैं। इस साल क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन भी होने हैं
जी,
तो इसराइल ये चाहता है कि किसी तरह से इलेक्शन होने से पहले पहले इतना प्रेशर बिल्डअप कर दिया जाए ओबामा पर, क्योंकि ओबामा कई लिहाज से इस वक्त जो है वो एक ऐसी सूरत हाल में है कि जो यानी इलेक्शन के हवाले से भी और खुद उनकी जात के हवाले से भी मुसलसल सवालात उठते रहते हैं। यानी अमेरिका में अभी तक ये बहस खत्म नहीं हो सकी है कि क्या ओबामा की पैदाइश अमेरिका में हुई थी या नहीं, उनकी उनके काले रंग की वजह से भी उनके ऊपर इतराज उठते रहते हैं। तो इलेक्शन की वजह से इसराइल ये चाहता है कि इससे पहले के इलेक्शन हों और ओबामा दोबारा जीत जाएं, क्योंकि जैसा कि अभी आपने भी कहा कि इस वक्त कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है इतना पावरफुल जो ओबामा को शिकस्त दे सके। हालांकि कोशिश रोमनी साहब भी लगे हुए हैं और दूसरे न्यूट गिंगरिच भी और सेंक्टोरियम भी, लेकिन कोई भी कैंडिडेट अभी ऐसा नहीं नजर आ रहा जो ओबामा को शिकस्त दे सके। तो इसराइल ये समझता है कि अगर ओबामा रीएलेक्ट हो गए तो शायद ओबामा जो है वो ज्यादा आजादाना फैसले कर सकेंगे और इसराइल की इतनी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन क्योंकि इस वक्त इलेक्शन से पहले पहले वो चाहते हैं कि इतना प्रेशर डाल दिया जाए अमेरिका के ऊपर, ओबामा के ऊपर, कि वो उनके सामने, प्रेशर के सामने झुक जाए और इसराइल जो है वो ईरान पे हमला कर दे। और वो खुद नहीं चाहते हमला, वो चाहते हैं कि हमला यूरोप और अमेरिका की तरफ से, नेटो की तरफ से या अमेरिका की तरफ से हो, क्योंकि अगर डायरेक्ट इसराइल हमला करता है तो उसको जवाब उसका मिलेगा, और जब जवाब मिलेगा रिटेलिएशन होगी जब ईरान की तरफ से, तो उसके बारे में अभी तक इनको ये अंदाजा नहीं है कि वो जवाब कितना सख्त होगा। तो एक ऐसा एक फैक्टर मौजूद है जहां पर खुद अमेरिका में भी ये बात है कि भाई अगर ये जंग हमने शुरू कर दी तो इसका अंजाम क्या होगा। जंग शुरू कर, जैसा आपने कहा कि ओबामा ने ये कहा कि भाई जंग करना कोई इतना आसान बात नहीं है, ये एक शुरू कर देना तो बड़ी आसान सी बात है कि आपने एक जंग शुरू कर दी, लेकिन उसको खत्म करना मुश्किल हो जाता है। हमारे सामने पिछली सदी, पिछली दहाई के अंदर जो दो जंगें अमेरिका ने शुरू की, इराक की जंग भी और अफगानिस्तान की जंग भी, कि वो जंग उनके गले पड़ गई और वहां से वो जान छुड़ाना उनकी मुश्किल हो रही है कि उन्होंने जंग शुरू तो कर दी लेकिन उसको खत्म नहीं कर पा रहे हैं। इराक के अंदर भी अब उन्होंने अपनी वहां से फौजें निकाल ली लेकिन एक इराक को एक ऐसी हालत में छोड़ के गए हैं कि जहां पर जो है वो अभी तक मसाइल मौजूद हैं। फिर अफगानिस्तान के अंदर वो चाहते हैं कि अपनी जान छुड़ाएं लेकिन नहीं छुड़ा पाते। तो कहने का मकसद ये कि जंग शुरू कर देना आसान होता है, जंग खत्म करना इतना आसान नहीं होता। और फिर इस वक्त जो अमेरिकन इकोनॉमी जिस सूरत हाल का शिकार है, अगर मिसाल के तौर पर इसराइल या अमेरिका ईरान पे हमला करते हैं तो आप ये सोचिए कि ऑयल की जो कीमतें हैं तेल की, वो कहां से कहां पहुंच जाएंगी। इस वक्त जो है वो तेल जो है 110 और 120 डॉलर पर बैरल के हिसाब से फरोख्त हो रहा है, तो अगर ये जंग शुरू हो जाती है तो एक अंदाजे के मुताबिक ऑयल की कीमतें जो है वो डबल हो सकती हैं। अगर वो 200 बैरल डॉलर फी बैरल हो गई तो अमेरिकन इकोनॉमी का क्या होगा। अमेरिका तो बगैर तेल के गुजारा नहीं कर सकता। तो कहने का मकसद यह है कि उसके जो असरात अमेरिकन इकोनॉमी में पड़ेंगे वो इतने शदीद होंगे कि वो सहार नहीं सकेंगे। इस वक्त वो पहले ही परेशान है अपनी इकोनॉमी के हवाले से, मिलियंस के हिसाब से वहां पे लोग बेरोजगार हैं, तो इसके जो उनकी मईशत पे जो असरात पड़ेंगे, ओबामा साहब को ये भी नजर आ रहा है। इसीलिए वो कोशिश ये कर रहे हैं कि बगैर जंग किए इतना प्रेशर डाला जाए ईरान के ऊपर, इतना प्रेशर डाला जाए और यूरोपीय यूनियन को साथ मिलाकर और दूसरे अंदाज से इस तरह की पाबंदियां नाफिज की जाएं कि ईरानी इकोनॉमी जो है वो किसी तरह से मुश्किलात के शिकार हो जाए और ईरानी अवाम जो है वो उनमें बेचैनी पैदा हो। लेकिन अभी हालिया जो इलेक्शन ईरान में हुआ है उससे इसका बिल्कुल अपोजिट साबित हुआ है। लोग वहां ज्यादा मुत्तहिद हुए हैं, उन्होंने इस बात को, बल्कि खुद अमेरिकन इस बात जो चंद दानिश्वर जो है वो इस बात को देख रहे हैं कि इस तरह से जब आप प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं इससे अवाम जो है वो मुतासिर हो रहे हैं। ये बिल्कुल वही हो रहा है कि जब इन्होंने इराक पर इन्होंने पाबंदियां लगाई थी सद्दाम हुसैन के जमाने में, तो उससे अवाम, इराकी अवाम जो थे वो मुतासिर हुए थे। सैकड़ों बच्चे जो थे, हजारों लाखों बच्चे जो है वो अद्वियात ना मिलने की वजह से और गजाई किल्लत की वजह से वहां मारे गए थे। तो आम आदमी उससे मुतासिर होता है। सद्दाम को तो कुछ नहीं हुआ था, सद्दाम जो है वो तो ऐश करता रहा, लेकिन आम इराकी जो था वो परेशान रहा। जितनी इन्होंने सैंक्शन लगाते गए, आम इराकी जो है उसको उसकी कीमत अदा करना पड़ी। इस वक्त जो सैंक्शन ये लगा रहे हैं और सख्त करते जा रहे हैं, इसका असर भी असल में ईरानी अवाम पे पड़ रहा है। आम अवाम जो है वो मुश्किलात का शिकार हो रही है। तो उससे ईरानी अवाम में और इस बात पर जज्बा पैदा हो रहा है कि भाई ये असल में हमारे दुश्मन है, ये हमारे तरक्की के दुश्मन है, ये नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में तरक्की हो, बिजली, एटमी बिजली हमारे यहाँ हो और हम जो है आगे तरक्की करें और हम जो है वो उस लेवल पे आ जाएं जहां पे हम खुद मुख्तार हो जाएं, जहां पे हमें वेस्ट तरक्की के लिए वेस्ट की जरूरत ना पड़े। इस वक्त चंद एक ईरान ही और मेरा दो एक दो और मुस्लिम मुवालिक दुनिया में ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी खुद मुख्तार है। बाकी तमाम जो दुनिया के इस्लामी मुवालिक हैं वो सब के सब अमरीकी इमदाद के ऊपर चलते हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्जे लेकर उनकी इकोनॉमियां चलती हैं। वाहिद ईरान है जो इतनी सख्त माशी मुश्किलात के बावजूद भी वो उनकी इकोनॉमी जो है स्टेबल है और वो उन्हें बगैर किसी कर्ज लिए वो अपना गुजारा कर रहे हैं और अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कोशिश इनकी यही है कि इस साल ओबामा के इलेक्शन से पहले पहले कोई ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी जाए, क्योंकि इसराइल के मुफादात दूसरे भी हैं। वो ईरान को, आपके सामने मिसालें मौजूद है माजी में, इराक में हमने देखा कि उन्होंने 1981 में ही जो है वो इराक के एटमी रिएक्टर को बम मार के तबाह कर दिया। फिर शाम के अंदर उन्होंने जो है वो बम मार के उसको, उनके एटमी रिएक्टर को तबाह कर दिया। तो असल में ये नहीं चाहते कि कोई भी दूसरा मुल्क इस इलाके में तरक्की करे और इनके बराबर आ सके। और ये अमेरिका भी ये बात खुल के कह चुका है कि हम इसराइल को इतना मजबूत फौजी एतबार से करना चाहते हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट में कोई दूसरा मुल्क اسرائیل کے برابر نہ آ سکے. اسرائیل کی جو برتری ہے وہ چاہتے ہیں کہ مسلم رہے مشرق وسطی میں. یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ انہیں کوئی خطرہ ہے اسرائیل کو کسی دوسرے ملک سے, کسی ملک کوئی ملک جو ہے وہ اسرائیل سے جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں بیٹھا ہوا, لیکن یہ کہ انہوں نے ایک مت بنایا ہوا ہے, ایک ہوا کھڑا کیا ہوا ہے کہ جناب اسرائیل کو کیونکہ وجود کو خطرہ ہے لہٰذا ہمیں اسرائیل کو فوجی اعتبار سے اتنا مستحکم رکھنا ہے کہ کوئی دوسرا ملک اس کے برابر بھی نہ آ سکے, اس کی جو برتری ہے پورے مشرق وسطی میں وہ قائم و دائم رہے. تو اس وجہ سے وہ یہ نہیں چاہتے کہ ایران کسی بھی لحاظ سے ترقی کرے, اور ترقی کرنے کے بعد اس کی اکنامی اتنی بڑی اور اتنی مضبوط ہو جائے کہ وہ معاشی اعتبار سے بھی اتنے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے اور وہ معاشی اعتبار سے ایک مستحکم ملک بن جائے تاکہ وہ ان کے مفادات ان کے ان سے آزاد ہو جائے, ان کے قبضے سے آزاد ہو جائے. جس طرح
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ حیدر حسین صاحب. عبدی صاحب, جناب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نے اپیک میں اپنی تقریر میں کہا ہے کہ یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملے کی قیمت بہت بھاری ہوگی, لیکن ان کے بقول اگر ایران نے ایٹمی ہتھیار بنا لیا تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہوگی. اور سب سے بدتر بات جو انہوں نے کہی ہے کہ ان کے بقول بدتر بات یہ ہوگی کہ اسرائیل نابودی کے سائے میں زندگی گزارے گا. اسرائیلی وزیر اعظم کے اس استدلال کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
جی, یہ ایکچولی جو بعض اوقات ایسی باتیں جو ہیں وہ یقیناً انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں کی جاتی ہیں کہ ایک دلیل دی جاتی ہے, پھر اس کے بعد دوسری دلیل لی جاتی ہے, پھر تیسری دلیل دی جاتی ہے, تاکہ مختلف حلقوں کو کسی نہ کسی دلیل کی بنا پر قائل کیا جا سکے. انہوں نے بلکہ گزشتہ دنوں ایک ایسی مثال بھی دی گئی کہ اگر امریکہ اس پر ایران کی نیوکلیئر انسٹالیشنز پر حملہ نہیں کرتا تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے امریکہ نے ہٹلر کے کیمپس پر حملہ نہیں کیا تھا کہ جب وہ کیمپس بنائے جا رہے تھے یہودیوں کو تباہ کرنے کے لیے, یہودیوں کو مارنے کے لیے. مقصد یہ تھا کہ یہ مماثل پیدا کرنا ہے کہ ایران کے انسٹالیشنز پر حملہ یہودیوں کو بچانے کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس وقت ان کیمپس پر حملہ تھا کہ ان کو اس سے پہلے تباہ کر دیا جاتا کہ وہاں پہ یہ یہودی جو ہیں وہ مار دیے جاتے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کیونکہ ان کو یہ معلوم ہے کہ اسرائیل خود ایک ناجائز حکومت ہے, ایک ناجائز ریاست ہے, اس کو ایسی جگہ بسایا گیا, پوری دنیا سے یہودی وہاں پر لائے گئے اور اس جگہ پہ بسایا گیا کہ جہاں پر ان کا کوئی حق نہیں تھا, وہاں پر فلسطین, وہاں پر عرب جو ہیں وہ پہلے سے رہ رہے تھے. تو کیونکہ ان کو اپنی سروائیول کا کوئی یوں کہیے کہ دلیل نہیں ملتی, ان کو اپنی سروائیول کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ملتی, تو لہٰذا وہ اس احساس میں بھی مبتلا رہتے ہیں کہ وہ اپنی جو انڈیپینڈنس ہے, اپنی آزادی ہے, اس کو دنیا کے سامنے جو ہے وہ ایک خطرے کی صورت میں دکھا سکیں. تو اب یہ بات کہنا کہ اگر ایران نیوکلیئر بوم بناتا ہے تو ہمیں ہمیشہ نابودی کا خطرہ رہے گا, دراصل یہ بوم سے نابودی کا خطرہ نہیں ہے. میں بار بار یہ عرض کر چکا ہوں کہ ایران کا ٹریک ریکارڈ بالکل کلیئر ہے. ایران جب یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نیوکلیئر بوم بنانے نہیں جا رہا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس بات پر یقین نہ کیا جائے. تو وہ خطرہ ان کو یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ ایک ایسی طاقتور مملکت بنے گا کہ وہ پھر اسرائیل کی یہ جو ایک ناجائز ریاست قائم ہوئی ہے خارجہ پالیسی کے میدان میں, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا کے میدان میں, جو ظلم اسرائیل اس وقت عربوں پر اور مسلمانوں پر کر رہا ہے, ایک مضبوط ایرانی ریاست اس ظلم کو پوری دنیا کے سامنے آشکار کرے گی. خطرہ اصل میں یہ ہے اور اسرائیل اسی لیے ایران کو مضبوط ہونے دینے نہیں جا رہا.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ اظہر عبدی صاحب. اسی کے ساتھ ہم حیدر حسین اور ڈاکٹر رشید خان کے بھی شکر گزار ہیں. بہرحال جہاں تک ایٹمی ہتھیار کا سوال ہے تو اسرائیل کو بھی معلوم ہے اور امریکہ کو بھی معلوم ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے نہیں جا رہا ہے, لیکن اسرائیل اب بھی ایران کے خوف کے سامنے زندگی گزار رہا ہے. اسی کے ساتھ پروگرام انداز جہاں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.